الحمد لله وكفى
Recording in
وسلام
progress.
على الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो ऐसा देखते हैं, बहुत देर हो गई है, आज तो ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो पिछली क्लास में हमने आखिरी बात जो पढ़ी थी आपसे पूछे बगैर हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि हम बात कर रहे थे आखिरी क्लास में थोड़ी सी बड़े बच्चों के या बड़े आदमियों की बात, सियासत के ऊपर बात कर रहे थे। और हम ये आपको बता रहे थे कि वह सियासत जो होती है ना, पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, ये मैनेजमेंट को कहते हैं, पीपल मैनेजमेंट। जो भी आपके पास जमात है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उसको आप कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट जो है तो उनके दरमियान लड़ाई ना हो जाए, ठीक है, तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे, सही है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट होती हैं। और ये पीपल मैनेजमेंट जब बात आती है तो सही मानों में जो पीपल्स मैनेजर होते हैं ना, वो जानते हैं इस बात को कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इंसानों को मैनेज करना। बाकी आप तोतों को मैनेज कर लें, आप मुर्गियों को मैनेज कर लें, आप बकरों को मैनेज कर लें, आप घोड़ों को मैनेज कर लें, आप गाड़ियों को मैनेज कर लें, या आप और इस किस्म की कंप्यूटर्स को मैनेज कर लें, वो तो फिर बेचारे बेजुबान होते हैं। क्या होते हैं? बेजुबान, ठीक है। चाहे कंप्यूटर हो वो भी बेजबान होते हैं, चाहे मुर्गियां हो वो भी बेजबान होती हैं, उनको मैनेज करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन इंसान जो होता है ना, ये इंसान क्या होता है, ये जुबान वाला होता है, इसको हैवाने नातिक कहा जाता है। सुना कभी नातिक किसको कहते हैं? सर काफी स्प्रेड आउट हुई हुई आज क्लास, तो नातिक बोलने वाला जानवर। जानवर कह रहे थे, अच्छा इस्तेमाल किया। तो नातिक नुतुक से निकला, नुतुक का मतलब होता है कि बोलना, बात करना, तो इसको हैवान नातिक भी कहते हैं। ये जो है ना, ये मैनेज नहीं होता भाई, ठीक है। ये हर बंदा क्या होता है, हर बंदा एक खुदा होता है अपने अपने जोन में, अपने ख्याल में हर बंदा एक खुदा है। अना रब्बुकुमुल आला, उससे बड़ा कोई खुदा है ही नहीं, ठीक है। तो खुदाओं को मैनेज करना, झूठे खुदाओं को मैनेज करना, छोटे 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 खुदा, इतने सारे छोटे खुदा हैं, इनको मैनेज करना जो है ये मुश्किल नहीं, ये नामुमकिन काम होता है। लेकिन इनको मैनेज जो है ना, फिर जो असली खुदा है ना, वो कर सकता है खाली। इनको कौन मैनेज कर सकता है? इनको जो असली खुदा है ना, असली खुदा, वो इनको बड़ी आसानी से मैनेज कर सकता है, हम नहीं मैनेज कर सकते, ठीक है। तो उसकी एक मिसाल जो है वो सहाबा किराम की जिंदगी से आपके सामने हमने क्या समझाई थी कि उमर रज़ा तआला की जब शहादत हो रही थी तो उन्होंने जो 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, अब वो 6 लोगों को क्या डिसाइड करना था कि भाई हु विल बी द नेक्स्ट खलीफा, ठीक है। तो ये एक इंतहाई डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि 6 लोग आपस में डिसाइड करें, तुम खलीफा बनोगे, तुम खलीफा बनोगे, तुम खलीफा बनोगे, ठीक है ना। तो अब वो डिसाइड हो नहीं पा रहा था कि भाई किस बुनियाद पर डिसाइड करें। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने इतनी मुश्किल सिचुएशन को कैसे हल करवा दिया, बस एक अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ान के दिल के अंदर बात डाल दी कि भाई तुम तो हो जाओ ना विड्रॉ, ठीक है, तुम तो इस रेस से बाहर ही निकल जाओ, और इस तरीके से सजेस्ट करो कि भाई हम 6 को जो है ना, वो 3 में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और जब 3 में रिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो खुद निकल गए, तो उसके बाद वो 2 रह गए। जब 2 रह गए तो फिर उन्होंने कहा जी के अब कर लेते हैं फैसला, और फिर उन्होंने खुद ही सजेस्ट कर दिया, सबने मान ली उनकी बात, ठीक है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं किया, ये अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह तआला ने उनके दिल में बात भी डाली। और सिर्फ ये कि उनके दिल में बात नहीं डाली, बल्कि दूसरे सहाबा को भी ये तौफीक दे दी कि तुम सब के सब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की बात को मान लो। अगर वो ना मानते तो क्या फायदा होता अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की सजेशन, राइट, उनके ब्रिलियंट आइडिया का क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ब्रिलियंट आइडियाज तो दे आर लाइक ओपिनियंस, ब्रिलियंट आइडिया। हमारे पाकिस्तान में तो सबके पास होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बेली बटन से ज्यादा होते हैं, बल्कि एक के पास एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक तो बेली बटन तो एक होता है ना, हमारे पास 1,000 ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं हर बंदे के पास। तो भाई ब्रिलियंट आइडिया का कोई फायदा नहीं है जब तक कोई माने ना उसको, ठीक है। तो बात सारी की सारी ये थी कि मसलों को जो सॉल्व करना है ना, ये हमारे बस में नहीं है, ये अल्लाह के बस में है, और अल्लाह ताला कर देते हैं जब हम अल्लाह की मान के चलते हैं, अल्लाह ताला के दीन पर अमल करते हैं, नेकी करते हैं, गुनाहों से बचते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला एक वाक्या, जो एक बात जो लिखी है अब्दुलरहमान के बारे में, वो ये कि जब नबी अलैहिस्सलाम की वफात होने वाली थी, नबी अलैहिस्सलाम की वफात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त ना नबी अलैहिस्सलाम ने आयशा सिद्दीका से फरमाया था कि आयशा, मुझे इस बात की फिक्र है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक है। मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हारी कफालत करता था, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तो तुम्हारा क्या बनेगा। या आयशा सिद्दीका की दिलजोई के लिए, आपकी उनको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए ने ऐसी बात करी, ठीक है। तो आप सरसरम को इस बात की फिक्र थी, ये नहीं कि नबी रसोल्लम को इस बात का ईमान नहीं था, तवक्कुल नहीं था कि अल्लाह ताला फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला जो है वो करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि आयशा सिद्दीका जो है वो भी अल्लाह की बंदी है, ठीक है। लेकिन इस तरह से इजहार जो है ना, वो कभी कर दिया जाता है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम इस तरह से इजहार कर दिया कि मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम्हारा क्या बनेगा। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के लिए एक बहुत ही कीमती बाग था उनका, जो कि वक्फ कर दिया, कि ये सारा का सारा बाग जो है ना, ये उम्महातुल मोमिनीन के लिए है। अब उस बाग को बेचा गया तो वो 4 लाख दिरहम के अंदर बिका, इतनी बड़ी वैल्यू उसकी मिली कि जिसके ऊपर फिर उम्महातुल मोमिनीन का जो है वो खर्चा सारा आराम के साथ हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से फरमाया कि अब्दुलरहमान ने और जरदारों को अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी थी, लेकिन उन्होंने दौलत का कितना अच्छा इस्तेमाल किया कि उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन के सरों से कमाने की फिक्र ही हटा दी, ठीक है। क्या उनको इस बात की फिक्र नहीं कि अब जो है वो अब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं है, तो अब कौन कमा के हमें खिलाएगा। तो ऐसे अपने माल को उनके लिए वक्फ कर दिया। एक सहाबी कहते हैं, अच्छा, उनके दिल में अल्लाह का कितना खौफ था, इसका एक वाकया बयान करते हैं कि एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं एक दफा अब्दुलरहमान इब्न औफ के घर गया, तो उन्होंने ना सारा दिन से रोजा रखा हुआ, और उस वक्त उनके सामने अफ्तार लाया गया था, अच्छे खाने थे अफ्तार के अंदर कुछ। तो अब्दुलरहमान अपने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस खाने को देखा ना, तो कहने लगे कि जब मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका इंतकाल हुआ था ना, तो अगरचे कि वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इस्लाम के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और नबी अलैहिस्सलाम के साथ लग गए थे, सिर्फ जो है वो दीन सीखते थे और दीन सिखाते थे, ठीक है। तो ये उन सहाबा में से इतने नहीं थे, मुसअब इब्न उमैर जो कि मार्केटिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, सेल्स भी साथ साथ कर रहे हैं, और जो है वो खेती बाड़ी भी साथ साथ कर रहे हैं और दीन भी सीख रहे हैं, नहीं, मुसअब इब्न उमैर इस तरह के थे जो कि बस प्योरली उन्होंने अपने आप को दीन सीखने और आगे लोगों को सिखाने के लिए वक्फ कर दिया था अपने आप को, ठीक है। तो जब इनका इंतकाल हुआ था उहद के ही बैटल के अंदर इनका इंतकाल हुआ था, तो इनको कफन देने के लिए मुसलमानों के पास कोई चादर भी नहीं थी, ठीक है। तो जो चीज मिली ना, वो चादर थी, एक छोटी सी टुकड़ा मिला था जो कि उनके पूरे बॉडी को भी कवर नहीं कर पा रहा था, तो उस यानी उनके लेंथ से जो है ना वो कपड़ा छोटा था, तो वो अगर ऊपर डालते थे ना सर को कवर करने के लिए तो पैर खुल जाते थे, और अगर पैर को कवर करने की कोशिश करते थे तो सर खुल जाता था। तो फिर नबी तो मुसलमानों ने क्या किया कि इनको उस चादर से सर को तो कवर कर दिया और पैर का जो एरिया खुला रह गया ना, तो वहां पर घास डाल दी, घास से जो है वो उनका पैर कवर कर दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने फरमाया कि मुसअब बिन उमैर जो है वो मुझसे बेहतर थे, क्योंकि वो जिस वक्त दुनिया से गए थे तो उनका ये हाल था कि उनके पास चादर तक नहीं थी कफन देने के लिए। और जब हमजा रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ था, वो भी उसी टाइम पे शहीद हुए थे उहद के मौके पर, तो जब हमजा रजी अल्लाह तआला शहीद हुए थे, तो अगरचे के वो नबी अलैहिस्सलाम के सगे चचा थे, लेकिन उनके कफन के लिए सिर्फ एक चादर थी। जो हमने चंद दिन पहले ये बात पढ़ी थी कि दो चादरें तो लेकर आई थी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा, लेकिन एक चादर जो है वो दूसरे अंसारी साहबा को दे दी गई थी और एक जो है वो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी गई थी। आप कुछ कहना चाहते?
और इनके अगर क्या वो
ये फॉर श्योर तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी कंपाउंड के अंदर ही जो औरत की शोभा है उनकी खबर
से
है। इज्तिमाई तो बात क्या था, मुझे याद नहीं है किसी और को याद हो सकता है। इज्तिमाई खबर, इज्तिमाई खबर सबकी तो एक साथ ही बनी थी। कुछ इस तरह से था कि कुछ को जो है वो एक खबर के अंदर दफन किया गया था, तो जहाँ पे तो डिटेल मुझे याद नहीं है इसमें कमांडर के याद हो रहा। वह वहीं पर है जहाँ पे ओहद के दूसरे शोहदा है। तो खैर फरमाते हैं कि ये लोग हमसे ज्यादा अच्छे थे, ठीक है, कि इनके पास जो है ना वो दुनिया की नेमतें आई ही नहीं थी, तो इनको तो 100% जो है वो आखिरत की नेमत मिली। लेकिन हम जो है ना, हम पर इतनी फतुहात हुई, इतने जो है वो बड़े बड़े इलाके फतह हो गए और फिर माल गनीमत के अंदर माल आना शुरू हुआ कि हमारे ऊपर दुनिया जो है वो वसी कर दी गई है। अब हमें ये खौफ हो रहा है कि हमारी नेकियों का सवाब हमें इस दुनिया में ही ना दे दिया गया हो, ठीक है, कि ये जो हम दुनिया के अच्छे अच्छे खाने खा रहे, क्योंकि अवतार कर रहे थे ना ये, और अवतार के लिए अच्छा सा खाना गया था इनके सामने, तो उसको देख करके उन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी और फिर रोना शुरू हो गए। ठीक है, यही बात हमने अदर जी से भी सुना, हजरत उमर रजान के बारे में भी। उनके एक दफा शरबत का ग्लास पेश किया गया था, तो वो ग्लास पीते हुए उनकी भी आंखों से टप टप आंसू बहना शुरू हो गए थे और वो इस बात को सोच करके रो रहे थे। कितना
कि आपने तो के बारे में पानी में शहद डाल
सारे साहब भाई, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सारे एक जैसे ही थे ना, ठीक है। तो ये लोग क्या सोचा करते थे कि जैसे हमारे जी ने एक दफा फरमाया था कि कुरान मजीद के अंदर ना एक आयत है सूरह अहकाफ के अंदर, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौमा युअरदुल्लज़ीना कफरू अलन नार, कि जिस दिन काफिरों को आग के ऊपर, जहन्नुम के ऊपर पेश किया जाएगा, मतलब कि उनको जहन्नुम नजर आने लगेगी ना, तो उस वक्त उनसे कहा जाएगा, अज़हबतुम तय्यिबातुकुम फी हयातिकुम वो दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, कि तुमने जो है ना वो दुनिया की नेमतें खूब एंजॉय कर ली, खूब तुमने मजे उड़ा ले दुनिया के अंदर, ठीक है। फलयौम तुज़ौन अज़ाबुल हूनी बिमा कुंतुम तस्तकबिरून, अब जो है ना तुम अपने तकबर की वजह से जो तुमने दुनिया के अंदर किया करते थे ना तकबर, अब उसका तुम अजाब चखो यार। यानी दुनिया में जो तुमने मजे उड़ाए हैं ना, ये मजे तुम उड़ा चुके, अब नो मोर मजे फॉर यू। तो सहाबा भी इसी तरीके सोचा करते थे अपने बारे में कि जब उनको दुनिया के कोई मजे मिलते थे तो उनको वो आयत याद आ जाती थी जो कि एक्चुअली अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए कही है, ठीक है, लेकिन खुदा का खौफ इतना होता था, इतना इनके ऊपर जो है ना वो जहन्नुम का डर होता था कि ये समझते थे कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा मामला ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि बेशक इस वक्त तो हम ईमान वाले हैं, ठीक है, लेकिन क्या पता मरने से पहले अल्लाह ताला हमसे ईमान वापस ले ले और हम भी काफिरों जैसे ही हो जाए, काफिरों के साथ में खड़े हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग डरते रहते थे। हजरत उमर रतान एक मरतबा शाम तशरीफ ले गए और ये जब मुसलमानों की आर्मीज जो थी वो शाम में थी, और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन उसके सिपहसालार थे, वो शाम में थे, तो वहां पर जो है ना वो ताऊन की बीमारी फैल गई थी, प्लेग जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। ये प्लेग या ताऊन जो है ये एक तरह की एक लाइक कंटेजियस बीमारी होती है कि जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। इसके अंदर टिपिकली जो है ना वो कहीं गर्दन में या किसी जगह पर कोई ट्यूमर बाहर निकल आता है, बाहर की तरफ निकल आता है, और ये ऐसा यानी ये बंदे से बंदे के अंदर बहुत तेजी से लगती है। इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग भी जो है वो मर जाते हैं। यूरोप के अंदर कई मरतबा जो है वो ताउन फैला है, प्लेग फैला है, और प्लेग की वजह से जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मर जाया करते हैं। यूरोप का वो जमाना था जब कोई तरक्की वरक्की यूरोप के अंदर नहीं थी, जिसको डार्क एजेस कहते हैं यूरोप के। तो इस तरह की एक प्लेग जो है वो शाम के इलाकों के अंदर फैल गई थी, जहाँ पे मुस्लिम आर्मीज मौजूद थी। तो उमर रजतान जो है ना, ये मुस्लिम आर्मी के पास जा रहे थे, और उनके साथ हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजतान भी मौजूद थे उसी सफर के अंदर। तो जब मकाम सरह में पहुंचे तो ये खबर मिली कि शाम के अंदर तो ये ताउन की वबा फैली हुई है। तो उस वक्त ना अब्दुलरहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि इज़ा समिअतुम बिही बिअर्दिन, कि तब जब तुम इस चीज के बारे में किसी जमीन का सुनो, किसी इलाके का सुनो कि वहां पर ये प्लेग फैल गई है, फला तकदमु अलैहि, तो अब उसके ऊपर तुम इकदाम ना करो, अब तुम वहां पे फर्दर प्रोसीड ना करो वहां जाने के लिए, ठीक है। वइदा वका बिअर्दिन व अंतुम बिहा, और अगर तुम किसी ऐसी जगह के ऊपर मौजूद हो कि जहां पर ये चीज हो गई है, प्लेग फैल गई है, एंड यू आर ऑलरेडी देयर, ठीक है, फला तखरुजू फिरारम मिन, तो तुम वहां से निकलने की कोशिश ना करो, ठीक है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा सहाबा कराम को नसीहत करी थी, वसीयत करी थी प्लेग के बारे में, ठीक है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि वहां पर प्लेग है और हम अभी वहां पे मौजूद नहीं है बल्कि हम वहां जा रहे हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के मुताबिक हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकी बात मान ली, जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम की बात इन्होंने नकल फरमाई थी, तो वहां से बात मान ली और वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। बुखारी शरीफ की यह हदीस है जो कि हजरत ने यहाँ पे नकल फरमाई है। तो यूँ अल्लाह ताला ने इन हस्तियों की ताउन से हिफाजत फरमा दी, बाकी जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम की बात मानी और वो वहां से नहीं निकले, और हत्ता कि वहीं पर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का भी इंतकाल हुआ और दूसरे भी बड़े बड़े सहाबा उनका भी वहां पर इंतकाल हुआ उस बीमारी से ही। अच्छा, फिर एक और मजे का छोटा सा वाकया है, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुलरहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान ना एक दफा थोड़ी सी अनबन हो गई। भाई हो जाती है दोस्तों के दरमियान, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान ना ताल्लुकात थोड़े से खराब हो गए, तो इतने में तलहा रतान जो है बीमार पड़ गए। तो अब्दुलरहमान इब्ने औफ रतान जो है वो तलहा रतान की अयादत के लिए तशरीफ ले गए, ठीक है। तो जब तलासन के बाद पहुंचे ना, तो तलहा रतान जो है वो बड़े जाहिर है दिन तो बड़ा खुश हुआ होगा उनका, कि ये मुझे मेरी आदत के लिए आए, हालांकि हमारे दरमियान तो लड़ाई चल रही थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ी मजे की बात कही, बड़ी अजीब बात कही, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब्दुलरहमान आप मुझसे बहुत बेहतर हैं, आप मुझसे अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हैं ना तो मैं आपकी आयादत के लिए नहीं आता, ठीक है। अगर आप बीमार पड़ते हैं ना तो मैं आपकी अयादत के लिए नहीं आता, लेकिन मैं बीमार पड़ा हूं तो आप मेरी अयादत के लिए आ गए, आप मुझसे ज्यादा अच्छे, ठीक है। अब देखिए बात तो हमने सुन ली, ठीक है, क्या समझ में आई? अरे तो आपसे पूछते हैं, आप लोग तो थक वक करके बैठे हैं, बात खत्म, कोई बताएगा क्या बात समझ में आई इससे? कि जो तलहा रताना उन्होंने ये वाली बात कही, आप अगर मेरी जगह बैठे होते तो इस पे फिर ऐसे बस पढ़ के आगे निकल जाते या कुछ बात समझाते। जी कौन बताएगा, आप उन पर कुछ और
उन्होंने अपने इसमें आजी भी ट्राई करी और उन्होंने इसमें दवाई भी करा सकता है।
हाँ, तवाजो और आजजी उन्होंने डेफिनेटली अख्तियार करी, सही है। लेकिन तवाजो तवाजो और आजजी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इससे और बेहतर हो सकती है, कैसे अख्तियार की उन्होंने? जी
तो अपने बारे में जो है वो कि वो मैं बड़ा आदमी हूँ, आई वुड हैव डन दिस, जो आपने किया है वो क्या है, अच्छे फॉर्म में ऐसे ही समझ आता है कि उसके अंदर तकबर अनाने से ठीक कहते हैं।
ये बात ज्यादा समझ में आने वाली बात है, और कुदरतन कल हम अंकल के साथ बैठे हुए थे जो बयान के बाद बैठते हैं, तो उसके अंदर ये वाली बात भी आई थी, और हाफिज हसान समान साहब भी मौजूद थे, तो तो सूरह आराफ की वो वाली आयत जो कि ज़ाहिर है आपको याद है, माशाल्लाह आपको याद है, मेरे तो याद नहीं है। तो उसमें भी इसी तरह की एक बात थी जिसका फिर हमने यही मफ़हूम निकाला था कि जो लोग आपस में मोहब्बतें करते हैं ना, ठीक है, तो वो हमेशा जो अच्छी बात होती है ना उसका क्रेडिट जो है वो दूसरे को देते हैं, अपने महबूब को देते हैं, और अपने लिए जो है ना वो कोई नेगेटिव बात ही सोचते हैं कि मैं तो इतना अच्छा नहीं था, मैं तो इस काबिल नहीं था, मैं तो ऐसा ना करता, लेकिन देखो ये कितने अच्छे हैं कि इन्होंने ऐसा काम कर लिया। अब भाई अभी फ्यूचर में की बात कर रहे हैं ना कि अगर ऐसा होता, अभी हुआ तो कुछ नहीं है, ठीक है, कि भाई ऐसा कोई माजी में तो वाकया नहीं हुआ था कि देखो नहीं अब्दुलरहमान जब आप बीमार पड़े थे तो मैं तो आपकी आयादत के लिए नहीं आया था, लेकिन जब मैं बीमार पड़ गया तो आप मेरी आयादत के लिए आ गए, ये माजी की बात तो नहीं हो रही है ना। तो ऐसा ऐसी कोई गलती हजरत अल्लाह रतान ने करी तो नहीं थी, ठीक है, कि अब उसके ऊपर वो अफसोस कर रहे हैं, राइट। तो माजी में अगर हो चुकी होती तब वो उसके ऊपर अफसोस कर रहे होते कि मैं ऐसा नहीं करता, नहीं, ये तो एक एक इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ना आता आपकी इयादत के लिए, लेकिन आप आ गए मेरी इयादत के लिए, ठीक है। तो इसको तो यही कहेंगे ना कि ही वॉज बेसिकली मेकिंग अप ए सिचुएशन दैट नेवर हैपेंड। अब तलहा ज़दान भी कौन थे, ये भी सहाबी है रसूल थे, और ये भी अशरे मुबशरा सहाबी थे, ये कोई कम दर्जे की चीज तो नहीं थे, ठीक है। तो हम इनके बारे में फिर यही बात समझेंगे कि देखो असल में ये क्या कर रहे थे, ये अपने दोस्त को जो है ना वो अपने ऊपर फोकियत दे रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, और अपने बारे में जो है वो बदगुमानी कर रहे थे कि भाई मैं, यानी अपने बारे में बदगुमानी का मतलब ये नहीं कि नाउज बिल्ला कोई बहुत ही मायूसी की बात कर रहे थे या कोई मेंटल सिकनेस की बात कर रहे थे, बल्कि अपने आप को उनसे कमतर समझ रहे थे, मैं बस इनसे कमतर, मैं इनसे ज्यादा अच्छा नहीं, ये मुझसे ज्यादा अच्छा, ये मुझसे ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। जैसे पीछे अब्दुलरहमान अपने औफ रज़ान के बारे में हमने पढ़ा कि मुसअब बिन उमैर रज़ान वो मुझसे ज्यादा अच्छे थे, वो ये भी तो कह सकते थे ना, मुसअब बिन उमैर को तो अशरा मुबशरा की बशारत नहीं मिली थी, मैं अच्छा हूं कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे। अशरे मुबशरा की बशारत किसको मिली थी, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली थी? नहीं, हत्ता के हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी नहीं मिली थी अशरे मुबशरा वाली बशारत, बशारत तो मिली थी अब्दुलरहमान अपने औफ को रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन इट डज नॉट मैटर। व्हेन यू वॉन्ट टू सीक एन एक्सक्यूज यू विल फाइंड वन, राइट, कोई ना कोई आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा। अब यही जो गलत आदत होती है, बुरी बात होती है, तो हम बुराई का एक्सक्यूज कोई ना कोई निकाल लेते हैं, बुरा काम करने का कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल लेते हैं, कोई ना कोई हुज्जत निकाल लेते हैं अपने लिए, ठीक है ना। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अच्छाई के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज निकालते हैं, राइट, वो अच्छाई के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल लेते हैं, और ये अच्छाई सबसे बेहतरीन अच्छाई है जो कि दूसरों के लिए हो, ठीक है। तो सहाबा की अच्छाइयां कहां से शुरू करें कहां खत्म करें कोई लिमिट नहीं है, एक से एक अच्छाइयां मौजूद होती है उनके अंदर। चले आप पौधे से कुछ करें जो
तो इनकी दुनिया अनबन तो दुल्हन
अब्दुल्ला,
मदानी साहब तुम्हारे बयान में कहा था कि सबसे अच्छा है जो लड़ाई खत्म करने को होता है वो आज कोई अगर आज ही कह रहे ना साफ काम की लड़ाई खत्म हो गई थी तो हो सकता है इन्होंने भी कोई तरीके से कमाल था कि आप उससे अच्छे हैं लड़ाई खत्म।
हाँ दोनों ने तरीका इस्तेमाल किया, उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल, उनका ये बड़ा जबरदस्त मौका है, चलो उनके आदत के लिए चलता है, ठीक है, और उन्होंने जो है वो जबरदस्त तरीके से इसको रेसिप्रोकेट किया, बेहतरीन जवाब दिया इसका कि मैं आपकी आयादत के लिए तो नहीं आ सका, अल्लाह ताला ने ऐसा मौका नहीं बनाया कि आप बीमार पड़ते मैं आपकी आयादत के लिए आया, मुझे इसका मौका नहीं मिला, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं, राइट, यानी नेकी में सबकत ले जाने में मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी ऐसी बात करूंगा कि गोया के आपके इस फिजिकल एक्शन का मैंने जबरदस्त किस्म का जो है वो बेहतरीन जवाब दिया, ठीक है, अच्छाई के अंदर। तो ये अच्छाइयां जो है ना ये हमें सहाबा कराम से सीखनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मजीद हम आज नहीं पढ़ेंगे, क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया, लेकिन एक दो से सवाल आए हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं, चश्मा सामने दूसरा वाला रह गया। इट मीन्स नहीं, ठीक है, इट मीन्स दैट तलहा रज़ातान वुडंट वॉन्ट टू गो टू हिम बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बट अब्दुलरहमान रज़ातान केम टू हिम बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट हिम टू हैव अ ग्रज अगेंस्ट हिम वाइल ही वॉज सिक। नहीं, ये शायद आपने जवाब दिया था जब हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था उससे पहले जब हम आपसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन नहीं, ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि तलहा तान वुड एक्चुअली नॉट वॉन्ट टू गो, ठीक है, बल्कि ही वॉज जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज लव इन दिस वे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते वापे, बस यही पढ़ूंगा। अच्छा, ये उनकी फजीलत में कहा था, तारीफ में, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था। जी माशाल्लाह, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद दिला दी। एक दफा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वाकया था, तो फरमाया था नबी अलैहिस्सलाम यूसुफ उससे अच्छे थे। याद है किसी, मुझे वो वाकई याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बात याद आ रही है कि एक दफा फरमाया था कि यूसुफ उससे अच्छे थे।
जेल से बाहर निकाल बादशाह के नजदीक और थोड़ा सा
नहीं, उस वक्त ये तो नहीं फरमाया था कि यूसुफ मुझसे अच्छे हैं, उस वक्त ये फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मुझे ये ऑप्शन मिलता ना कि मैं अभी जेल से बाहर निकल जाऊं, तो मैं यूसुफ की तरह वेट ना करता कि नहीं पहले जो है वो आप औरतों से जाके पूछे कि उन्होंने सच कहा था कि झूठ बोला था, मैं तो फौरन निकल जाता जेल से, ठीक है। और खैर, उसमें उसकी दूसरी हिकमत है, लेकिन गालबन यही फिर इसी तरह से देखा जाएगा कि यूसुफ मुझसे ज्यादा इस्तेकामत वाले थे, यूसुफ ज्यादा सबर वाले थे, यूसुफ ज्यादा स्ट्रांग थे, मैं तो वेट ना करता, मैं तो फौरन निकल जाता जेल में से, अगर मुझे बुलाया जाता ना बादशाह की तरफ से, मैं तो फौरन निकल के चला जाता वहां पर, ठीक है। तो ये एक तरह से, हाँ, इसको भी कह सकते हैं, शायद यही वाक्य था जो मेरे जहन भी आ रहा था। अच्छा, और क्या लिखा है उन्होंने कि पिछली क्लास में के ताल्लुक से सवाल था कि हदीस मुबारक में है कि तन्हाई वाला गुना बहुत शदीद होता है, जबकि पिछली क्लास के बयान में तो एलानिया गुना शदीद है। मैं कहा कि एलानिया गुना शदीद है, क्या इसमें कोई तजाद है या तदबीक की सूरत मौजूद है? अच्छा, कि एलानिया गुना ज्यादा शदीद है और वो जो तो छुपा हुआ गुना जो है वो ज्यादा शदीद है, इनमें तदबीक की सूरत, जो ऐलानिया गुनाह करता है उसको फासिक कहा जाता है, और इसके बारे में हदीस मुबारका के अंदर जो मजमून आता है वो ये है कि जिसका मफहूम बनता है कि मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफी मिल जाएगी सिवाय उनके कि जो कि ऐलानिया गुनाह करते हैं, ये मफहूम बनता है उस हदीस में, ठीक है। यानी गुनाह भी करते हैं और उसके बाद फिर दिखाते भी हैं लोगों को, और उस पर जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर इतराते भी हैं, ठीक है, कि कल मैंने ऐसे उसको बेवकूफ बनाया, कल मैंने ऐसे उसको सड़ाया, कल मैंने ऐसे उसको झूठ बोला, कल मैंने ऐसे उसके साथ ये किया, ठीक है ना, लोगों के सामने इतरा करके बता रहे होते हैं। तो फरमाया कि इस किस्म का जो बंदा होगा ना उसको माफी नहीं मिलेगी, बाकी लोगों को माफी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंतहाई शरीफ किस्म की सिचुएशन है। लेकिन जो दूसरा आपने पूछा कि भाई तन्हाई के गुनाह की जो है वो उसकी भी बहुत ज्यादा है, एक हदीस मुबारक के अंदर कि तिहामा की पहाड़ जैसे उनके नेकियां होंगी, लेकिन चूंकि वो तन्हाई में गुनाह करते थे तो इस वजह से ना उनकी ऐसी बड़ी बड़ी नेकियों को भी जो है वो डस्ट बना दिया जाएगा, बिल्कुल हवा में उड़ा दिया जाएगा, कोई उनकी नेकियों की वक्त नहीं होगी। तो बहरहाल, अब इन दोनों के दरमियान जो है ना वो हमें बैठ करके कंपैरिजन करना कि नहीं ये ज्यादा मुश्किल है कि ये ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा शदीद है कि ये ज्यादा शदीद है, इसमें ज्यादा सजा है कि इसमें ज्यादा सजा है, हमें इस कंपैरिजन की दीन के अंदर तालीम नहीं दी गई है, ठीक है। बिकॉज हमारा दीन जो है ना ये सब्जेक्टिव दीन नहीं है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप बैठ करके बस सब्जेक्ट के बारे में, अच्छा ये सब्जेक्टिव भी इसको, ये इसका इतना है 20 किलोग्राम, इस वाले गुना का वजन है, इस गुना का वजन 40 किलोग्राम है, इसका वजन जो है 100 किलोग्राम है, अब बैठ करके जो है वो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, ऑब्जेक्टिव दीन है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो है ना वो हर किस्म के गुना से बचना है, हर किस्म के गुना से बचना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब हमें गुनाह करके इतराने की वईद बताई गई तो हम उस गुनाह से भी बहुत ज्यादा डरना शुरू हो जाएं, और जब तन्हाई के गुनाह की जो है वो वईद बताई गई तो हम तन्हाई के गुनाह से भी बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अच्छा इसका ज्यादा गुनाह है और इसका कम गुनाह है तो चलो मैं कम गुनाह वाला काम करता हूँ, ठीक है, और ज्यादा वाला गुनाह वाला काम नहीं करता, जिसकी ज्यादा पिटाई होगी वो वाला काम नहीं करता, कम पिटाई वाला काम कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी इन दोनों हदीसों का मतलब नहीं है, उन दोनों मफहूमों का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मतलब बस यही है कि मकसद ये है कि हमने हर किस्म के गुनाहों से बचना है, ना तो तन्हाई को समझना है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं देखता तो मुझे पिटाई नहीं, पिटाई नहीं होगी, ठीक है, और ना जो है वो इतराने को हल्का समझना है कि चलो लोगों के लोग खुश हो जाएंगे मेरे गुनाह के उससे सुन करके, तो इसका मतलब ये है कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लोगों को खुश कर दिया तो अब जो है वो सब चलता है, कुछ भी नहीं है ऐसा फिर नहीं है। हमने हर किस्म के गुनाहों से बचना भी है, और अगर हो गया खुदा ना खास्ता तो उससे हमने तौबा करनी है।
मेरी और मेरे का सम्मानना रशीद यानी खिलाड़ी को मैं था कि किसी भी गुनाह को करके सीधा समझना सबसे बड़ा गुनाह ये बात का वजह से
बिल्कुल, पिछली क्लास में हमारे आपके वाली बात हुई थी ना कि किसी भी गुनाह को करके उसको हल्का समझना जो है ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। गुनाह को प्रमोट करने वाले और सेलिब्रिटीज भी इसी में शामिल हैं। हाँ अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रिटीज जिनको कि हम बहुत इज्जत देते हैं और बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, तो वो तो इस वाले गुनाह के अंदर शामिल होते हैं कि जो कि गुनाह कर भी रहे हैं उस गुनाह की जो है वो इशाअत भी कर रहे हैं और जो है वो फिर भी हमारे मकबूल, तो इस तरह से तो फिर हम भी उनके साथ ही शामिल हो जाते हैं, ठीक है, इस गुनाह के अंदर हम भी शामिल हो जाते हैं और अल्लाह ना करे कि कयामत के दिन उनका और हमारा हिसाब जो है ना वो एक साथ कर दिया जाए, ठीक है। तो गुनाह करने वाले किसी भी शख्स को जो है वो हमने इज्जत की निगाह से नहीं देखना, ठीक है, यानी उसके गुनाह को इज्जत की निगाह से हरगिज हरगिज नहीं देखना, और बिल्कुल ऐसे शख्स के बारे में भी हमने दूर ही रहना है उस शख्स से, ठीक है। तो आखिर अलहमदुलिल्लाह।
Recording stopped.